ഓ ഓ ഓ ആദിഗുരു ഭഗവാൻ ശങ്കരാചാര്യജി ദ്വാര വിരചിത് ശിവഭക്തി ശിവതപ്രോത് ശിവാനന്ദ ലഹരി സ്തോത്രക്ക് ആധാർ പർ ശിവഭക്തി കുച്ച് ഭാവ കോ വിചാർ കേ അഭ്യാസ ഛത്തീസവാ ശ്ലോക ഭക്തോ ഭക്തി ഗുണാമൃതേ മുദമൃത പൂർണേ പ്രസന്നേ മന കുംഭേ സാംബതവാംഗ്രി പല്ലവയുഗം സംസ്ഥാപ്യ സംവിത് ഫലം സത്വം മന്ത്രമുദീരയൻ നിജസരി രാഗാരശുദ്ധിം വഹൻ പുണ്യാഹം പ്രകടീകരോമി രുചിരം കല്യാണമാപാദയൻ ആംനായാം ബുദ്ധിസാദമാദരേണ സുമന സമുദ്യന്മനോ മന്ഥാനം ഹൃദൃഢഭക്തിരജ്ജുസഹിതം കൃത്വാ മഥിത്വാ തതഃ സോമം കൽപ്പതരുസുപർണ സുരഭി ചിന്താമണി ധീമതാം നിത്യാനന്ദസുധാം നിരന്തരരമ സൗഭാഗ്യമാതന്വതേ പ്രാക്പുണ്യാചലം പ്രാക്പുണ്യാചലമാർഗദർശിതസുധാ മൂർത്തി പ്രസന്ന ശിവ സോമസദ്ഗുണസേവിതോ മൃഗധര പൂർണസ്തമോ മോചക ചേതപുഷ്കരലക്ഷിതോ ഭവതി ചേത് ആനന്ദപാഥോ നിധി പ്രാഗൽഭേന വിജൃംഭതേ സുമനസാം വൃത്തിസ്തദാ ജായതേ ധർമ്മോ മേ ചതുരംഗ്രിക സുചരിത പാപം വിനാശം ഗതം കാമക്രോധമദാദയോ വിഗലിതഃ കാലാസുഖാവിഷ്കൃതഃ ജ്ഞാനാനന്ദമഹോഷധി സുഫലിത കൈവല്യനാഥേ സദാ മാന്യേ മാനസപുണ്ഡരീകനഗരേ രാജാവതഞ്ചേ സ്ഥിതേ ഭക്തോ ഭക്തിഗുണാമൃതേ മുദമൃതാ പൂർണേ പ്രസന്നേ മനഃ കുംഭേ സാംബതവാംഗ്രി പല്ലവയുഗം സംസ്ഥാപ്യ സംവിത് ഫലം സത്വം മന്ത്രമുദീരയം നിജശരി രാഗാരശുദ്ധിം വഹൻ പുണ്യഹം പ്രകടീകരോമി രുചിരം കല്യാണമാപാദയൻ ശങ്കരാചാര്യജി ലോക വ്യവഹാര മേ ശാസ്ത്രീയ കർമ്മ കാ ബഹുത് മഹത്വ ഹൈ ഉസേ ശാസ്ത്രീയ കർമ്മ ജോ ലോക മേ ബഡാ പ്രസിദ്ധ ഹൈ ഇസ്ലിയേ ഉസ്കോ ലൗകിക കർമ്മ ഭി കഹേംഗെ പ്രായ കർക്കെ ഹം ലോക ലോക വ്യവഹാര മേ ഘർ കാ നിർമ്മാണ കർത്തേ ഹൈ നിവാസ് കർനേ കേ ലിയെ സ്വയം ബനാതെ ഹൈ യാ ബനി ബനായി ഖരീദ് ലേതേ ഹൈ या भाड़े में ले लेते हैं, चाहे स्वयं बनाया हुआ हो चाहे खरीदा गया हो चाहे भाड़े में लिया गया हो। एक हमारी परंपरा है वैदिक सनातन धर्म की कि उस गृह शुद्धि किए बिना घर में प्रवेश नहीं करते। घर में प्रवेश करने से पहले गृह शुद्धि किया जाता है, उसके बाद गृह प्रवेश करते हैं। और हमारी मान्यता है कि उस घर में सब मंगलमय होता है। फिर उस घर में अशुभ नहीं होता, सभी शुभ हो जाता है, मंगल होता है। क्योंकि न जाने कौन कौन कैसे कैसे व्यक्ति ने उसमें निवास किया है, या जिस जगह पर हमने घर बनाई है, न जाने उस जगह पर कितने प्राणियों के, कैसे कैसे प्राणियों का जीवन अंत हुआ है, उसका दोष उस घर में तो आ ही सकता है। क्योंकि पृथ्वी अनादिकाल से इसी अस्तित्व में है, और इसी पृथ्वी में अनादिकाल से न जाने कितने जीवों का समाधि हुआ है। महात्मा लोग कभी कभी कहा करते हैं वो सृष्टि में, अब क्या जानेंगे, आज के 50-100 साल के बाद बद्री केदारनाथ की यात्रा करने वालों को क्या पता, उस मंदिर के अंदर सैकड़ों यात्री मरे थे, ये क्या पता उन लोगों को है। लेकिन वो आज सत्य है कि नहीं बोलो, उस केदारनाथ मंदिर के चारों तरफ अभी जो मिट्टी जमी हुई है 7-7, 8-8 फुट, उस मिट्टी के अंदर सैकड़ों यात्री दबे पड़े, उनकी लाश दबी है। मुझे लगता है कि इतनी आसान से उस मिट्टी को अभी हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि केवल मिट्टी नहीं है उसमें, जो पत्थर के टुकड़े हैं, पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, उस सबको हटाना बरसों लगेगा। और जब तक उनको हटा पाएंगे तब तक तो लाश सड़ साड़ के केवल हड्डी मिलेंगे, मांस मुंस तो कुछ भी नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि एक दो दिन में तो हटा नहीं पाएंगे, वो संभव ही नहीं है। तब इतिहास क्या होगी, वो मिट्टी जहां भी पड़ेंगे लाशों से रंजित मिट्टी होगी ना। ये बात अलग है कि हिमालय अपने आप में पवित्र है और सब यात्री थे, इसलिए वहां कोई गलत व्यक्ति तो था नहीं, दुष्ट व्यक्ति तो थे नहीं। देखो बड़ा विचित्र है रहस्य, जानना बड़ा मुश्किल है, कह देना आसान है, जानना बहुत मुश्किल है। क्या पता ये सारे का सारा वितंडा ये विभत्स दृश्य किसी एक दुष्ट व्यक्ति के प्रवेश से भी हो सकता था, और एक को दुष्ट व्यक्ति के लिए दंड देने के लिए इतना भी प्रलय हो सकता है भाई, ये तो इतिहास बड़ा विचित्र है। एक दुष्ट को मारने के लिए कई सज्जनों को भी मारा गया है, तो यदि सज्जनों के आश्रय में कोई दुष्ट पनप रहा हो तो वो भी करना पड़ता है। लेकिन ये परमात्मा ही जाने, प्रकृति जाने, हमारे परिभाषा से कुछ होने वाला नहीं है भाई। एक दुष्ट दुर्योधन को मारने के लिए भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सबको मारना पड़ा कि नहीं भाई, बोलो, इतिहास है। भीष्म पितामह में कोई दुष्टता थी? नहीं थी। द्रोणाचार्य में कोई दुष्टता थी? कर्ण में क्या दुष्टता थी? न जाने कितने सज्जनों को मारना पड़ा एक दुष्ट को मारने के लिए, क्योंकि वो दुष्ट उन्हीं सज्जनों के आश्रय में आश्रित होकर और उद्दंड हुआ था और दुष्टता में चरम सीमा में पहुंच गया था, और इनको मारे बिना उसको मारना संभव नहीं था। तो सब ये ईश्वर की जो लीला थी वो वही जाने, हम लोग नहीं जान सकते, अपनी परिभाषा से ये सब चलने वाला नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, हजारों निर्दोष तीर्थयात्रियों को मारने में कारण बना कि नहीं हुए घटना, तो इसी तरह ये जमीन है जहां हम खड़े हैं, जहां बैठे हैं, सृष्टि से आज तक जब से पृथ्वी का अस्तित्व हुआ है, न जाने कितने प्राणियों की समाधि हुई है, कैसे कैसे प्राणियों की समाधि हुई है। इस घर में जो मिट्टी का प्रयोग हुआ, ईंट का प्रयोग हुआ है, वो पता नहीं कहां की मिट्टी है, कैसी मिट्टी है, उससे बना गया ईंट है। इसीलिए गृह शुद्धि बहुत जरूरी है। घर निर्माण हो जाए, घर निर्माण होने के बाद गृह में प्रवेश करने से पहले उस घर में किसी भी निमित्त से प्राप्त अशुद्धि का, वो किसी भी निमित्त से प्राप्त अशुद्धि का निवारण करने के लिए हमारी वैदिक परंपरा में, सनातन धर्म में गृह शुद्धि की एक परंपरा है, शास्त्रीय परंपरा, लौकिक परंपरा है। इसी तरह यह हम आपका जो शरीर बना है, आपका हमारा ये जो शरीर बना है, ये पता नहीं किस प्रकार के अन्नों से बना, किस प्रकार के मेटेरियल से बना है, आपको खुद पता नहीं है। जो अन्न आप खाते हो कहां पैदा किया है, किसने पैदा किया है, जिसने उस अन्न को उत्पन्न किया है, न जाने कितने लेबरों का, पारिश्रमिक का शोषण किया होगा, क्या कर लोगे बोलो है? और जिस खेत में ये अन्न उत्पन्न किया गया है, उसमें उसके जोतते समय में, उसके नलाई करते समय, गुड़ाई करते समय, उस फसल के लिए न जाने कितनी जीव हत्या हुई होगी। खेती करते समय खेत में खड़े होकर देखो तो तुम्हें लगेगा कि इस तरह खेती करके खाने के अच्छा भूखे मर जाना ठीक है। इतनी प्राणी हत्या होती है, इतनी हिंसा होती है। अब उसको रोका भी जा ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अनिवार्य है, खेती करना है तो हिंसा होते होगी होगी, कैसे रोकोगे उसको। और वो अन्न खाओगे और उसी अन्न से बनेगा जो शरीर है, उसमें वो सारा दोष का तो प्रवेश हुआ ही है बाबा। और हम खाने से पहले सावधान तो है नहीं, हमें उन दोषों पर विचार करना फुर्सत कहां, हमको तो भोजन सामने आ गया, खा लिया, बस चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण बोलते ने अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन तुम्हें पता नहीं है जो अन्न तुम पचाकर पकाकर खाते हो उसमें कितना दोष है, कितना पाप है, विचार करके खाना चाहिए। भाई पुंजते ते तुगम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्, यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यंते सर्व किल विषयी, भुंजते इति त्वगम पापा ये पचंते आत्म कारणात्। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। यदि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिन इत्यादि भाव से प्राणाय स्वः अपानाय स्वः समानाय स्वः व्यानाय स्वः उदानाय स्वः पंच प्राणभ्य स्वः भूपतये भुवनपतये भूतानां पतये इत्यादि। भगवत अर्पण बुद्धि से परमात्मा को स्मरण करते हुए, परमात्मा को अर्पण करते हुए, परमात्मा संबंधी यज्ञ करते हुए उसके प्रसाद के रूप में तुम खाते हो, तभी वो अन्न दोष हट सकता है। अन्यथा इस प्रक्रिया के बिना तुम अन्न पकाकर खाते हो तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अन्न नहीं खाते हो तुम, वास्तव में पाप ही को खाते हो। यज्ञ शिष्ट तुम जो अन्न खा रहे हो वह यज्ञ शिष्ट होना चाहिए। यज्ञ शब्द का अर्थ होता है परमात्मा, यज्ञ वही ब्रह्मा, यज्ञ वही शिवा, यज्ञ वही विष्णु। वेद में यज्ञ शब्द का अर्थ विष्णु भी कहा, यज्ञ शब्द का अर्थ शिव को भी कहा है, यज्ञ शब्द का अर्थ ब्रह्म भी कहा है। यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ वही शिवा, यज्ञ वही रुद्र,
ये वेद के मंत्र हैं। ये रुद्र ही यज्ञ है, यज्ञ ही रुद्र है, यज्ञ ही विष्णु है, विष्णु ही यज्ञ है, और विष्णु को अर्पण किया हुआ ही यज्ञ महान यज्ञ है वो। और परमात्मा को अर्पण करने के बाद अवशिष्ट शिष्ट बचा हुआ, भगवान की इतनी कृपा है कि हम उनको जो अर्पण करते हैं उस अन्न को, अर्पण किए हुए अन्न को, चाहे किसी भी प्रकार से निमित्तगत दोष हो, उन सारे दोषों को हटाकर शुद्ध करके हमारे लिए छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि परमात्मा उस अन्न को शुद्ध करते हैं उसके बाद स्वयं खा के समाप्त कर दें। कभी देखा है आप लोगों ने, आपके द्वारा अर्पण किया हुआ जो अन्न है, भगवान को अर्पण किया हुआ वो अन्न, आप लोग भगवान को जिमाते हो ना, जमवा आओ सुन तीर वर श्याम ला रहे है? करते हो कि नहीं? आओ जम, भोजन करने के लिए आओ, हे श्याम सुंदर आओ भोजन करो। तो वो भगवान तो खाते तो है ही नहीं, आते जरूर है, खाते कुछ नहीं, करते क्या है? तुम्हारे द्वारा जो उसके सामने अर्पण किए हुआ जो अन्न में, खेत से खलियान, चक्की से चूल्हे तक का जो अन्न में दोष आता है, उन सारे दोषों का अपाकरण कर देते हैं, अन्न को शुद्ध कर देते हैं। इसी को कहते हैं गीता में यज्ञ शिष्ट। परमात्मा को अर्पण किया वो हो गया यज्ञ, परमात्मा के द्वारा शोधित होकर बचा हुआ जो अन्न हो गया वो हो गया यज्ञ शिष्ट। शिष्ट का अर्थ बचा हुआ, और वही प्रसाद हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ शिष्टासीना, जो बचा हुआ अन्न को प्रसाद के रूप में खाता है, असीन माने खाने वाले, मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी, वे लोग प्रसाद के रूप में खाने वाले लोग अन्न में संबंधित निमित्तगत और ऐसे दोषों के वह सर्व किलबिष, सारे दोषों से मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं, दोष संक्रमित नहीं होता। और यज्ञ शिष्ट बनाए बिना यदि सीधा ही परमात्मा को निमित्त बनाए बिना सीधा ही कोई अन्न पचन करके खाता है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वास्तव में वो अन्न नहीं खाता है, खेत से खलियान और चक्की से चूल्हे तक होने वाले जो जीव हिंसा और दोष है, पाप है, अघ, ये पचन्त्यात्म कारणात् भुञ्जते त्यु अघम पापम, अघम पापम घोर पाप को ही वो खाते हैं, तो कहां से तुम्हारा, और वही अन्न खाकर बना हुआ जो शरीर होगा उस अन्न से तीन चीज बनते हैं, दो चीज बनते हैं तुम्हारे उस अन्न से, छंदो के उपनिषद में बताया गया है, भुक्तम अन्नम त्रिधा विभज्यते, खाया गया जो अन्न है वह अन्न का तीन भाग होता है, उसमें से जो स्थूल भाग है वह पुरुषम मल बनकर निकल जाता है, मध्यम भाग से मज्जा बन जाता है, और सूक्ष्म भाव भाग से मन बनता है, और उसी मध्यम भाग से बना हुआ शरीर है मांस अस्थि, इसी प्रकार के जो तेज आप खाते हो उस तेज के सूक्ष्म भाग से वाणी बनती है और मध्यम भाग से हड्डी बनती है, हड्डी तेजस है, घृता तेल जो आप खाते हो उससे हड्डी का विकास होता है। तेजो मयी वाक इति आपो मयी प्राण इति, आप जितना शुद्ध जल पियोगे उतने ही प्राण को बल मिलेगा, आप जितने शुद्ध अन्न खाओगे उतने ही शरीर स्वस्थ होगा, और जितने आप घी और तेल आदि का सेवन करोगे सात्विक द्रव्य का उतना ही आपकी वाणी पवित्र होगी।
क्योंकि तेजस से वाणी का निर्माण होता है। अब आप दूषित अन्न खाएंगे और उस अन्न के द्वारा बना हुआ जो शरीर होगा वो भी तो दूषित ही होगा ना, और उस दूषित शरीर में रहकर आप शांति से कहां रह पाओगे। आप कहा जाता है किसी घर में भूतों का निवास हो तो उस घर में शांति से कोई न रह पाए। रह पाएंगे? भूत प्रेतों का निवास हो तो उस घर में शांति होगी? रह पाएंगे शांति से? लोग कहते महाराज हमारे घर में भूत का निवास है, कुछ करना चाहिए। क्या करोगे? बोले कुछ पूजा पाठ करो, कुछ भूत भगाने के लिए कुछ करना चाहिए। महाराज क्या करना चाहिए? तो हम कहा करते हैं रुद्री लगा दो, चंडी पाठ कर लो, है ये करते हैं कि नहीं? घर शुद्धि के लिए, घर में कहीं अनिष्ट कोई प्रेत आत्मा का वास हो है ऐसा लगे तो हम लोग वही करते हैं ना, गृह शुद्धि घर शुद्धि, वो प्रेत आत्मा निकल जाए। गोकर्ण जिले भागवत लगा ली थी, किसको भगाने के लिए? धुंधकारी को भगाने के लिए। धुंधकारी की मृत आत्मा प्रेत आत्मा उसी घर में रह गया, बाप तो जो सन्यासी बनकर चला गया, मां कुएं में मरकर मर गई, कूद कर मर गई, और वो धुंधकारी उस घर में मरा हुआ था तो वहीं प्रेतात्मा बनकर रह रहा था, भटक रहा था। तीर्थ यात्रा करने वाले गोकर्ण जी तीर्थ समाप्त करके जब घर में आए तो घर में कोई भी नहीं था, न बाप न मां न भाई, अकेले रात को सोए थे तो धुंधकारी ने तूफान शुरू कर दिया। गोकर्ण जी उठे, चारों तरफ देखते हैं कोई व्यक्ति नहीं मिलता है, फिर बत्ती निभाई और सो गए, फिर तूफान शुरू हो गया, बत्ती बत्ती जला ली, देखा चारों तरफ कहीं कोई नहीं मिलता है, तो उन्होंने तुरंत जल अभिमंत्रित करके गायत्री मंत्र से जल अभिमंत्रित करके पूरे घर में जल का छिड़काव कर दिया और कहा कि कौन है तू, कौन है? तो जब उस मंत्र के प्रभाव से गोकर्ण के मंत्र के प्रभाव से धुंधकारी बोलने लगा, दिखा तो है ही नहीं क्योंकि आतिवाहिक शरीर में भटक रहा था उस घर में, स्थूल शरीर में तो था नहीं, तो आतिवाहिक शरीर भी उस घर में भटक रहा था, तो बोल पड़ा मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है, मुझे इस तरह विषय आसक्त हुआ हुआ देखकर पंचगणिकाओं ने मुझे इस तरह यहां मार डाला, मेरी मां कूद कर मर गई कुएं में, बाप भाग गया सन्यासी बन गया, मेरे दुष्टाचरण का प्रतिफल ये हो गया कि अब मैं प्रेतात्मा होकर यहां भटक रहा हूं, मेरे उद्धार का तुम कुछ उपाय करो भाई, नहीं तो मैं इस घर से शांति से न मैं बैठ पाऊंगा न तुमको रहने दूंगा, है? मेरा उद्धार करो भाई। तो क्या करे? तो भागवत सप्ताह लगाई, और उस घर में सप्ताह लगाने का प्रतिफल यह हुआ कि धुंधकारी की आत्मा को प्रेत बाधा से मुक्ति मिली, प्रेत मुक्ति। हाँ, ये नहीं समझ लेना धुंधकारी को वैकुंठवास मिल गया या वो मोक्ष हो गया, जीवन मुक्त हो गया, जीवन तो था ही नहीं तो कहां से जीवन मुक्त होगा। वेदांत सिद्धांत के अनुसार जीवन मुक्त हुए बिना विधेय मुक्त नहीं होते, वेदांत सिद्धांत के अनुसार जीवन मुक्त पूर्वक होने वाले जो विधेय मुक्ति है वही असली मुक्ति है, ये वेदांत सिद्धांत है। तो चलो मूल प्रसंग में आओ, गृह शुद्धि की बात यहां चल रही है। आप जैसे देह शुद्धि करना पड़ता है वैसे गृह शुद्धि करना पड़ता है, तो गृह शुद्धि की एक प्रक्रिया, पंडित को बुलाओ और पुण्याहवाचन करो। तो उससे पहले सामान्य लोक में प्रसिद्धि परंपरा यह है कि गृह प्रवेश गृह शुद्धि के लिए सबसे पहले कलश की आवश्यकता पड़ती है, ताम्र कलश, उसमें जल भरो, धागा बांधो, है कलश बनाते हैं, पंडित लोग देखे हैं तो तांबे का कलश रखते हैं और उसमें जल भरते हैं और पंच पल्लव रख लेते हैं, ऊपर नारियल रख लेते हैं और उस कलश के गले में एक धागा बांध लेते हैं, मौली बांधते हैं ना डोरा, देखा है कि नहीं? था तो बांध लेते हैं। फिर उसके बाद उस कलश में पुण्याह्वान करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, सारे तीर्थों का आवाहन करते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेन्द्र तनया चरणमति व्यत्रिका चिप्रा विप्रवती महासुर नदी ख्याता जया गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहितम कुरुवंतु नो मंगलम। सारे तीर्थों को वहां आवाज, अंकुश मुद्रया तीर्थ को आह्वान करते हैं। ओम बम वरुणाय नमः, ओम बम वरुणाय नमः, ओम बम वरुणाय नमः, इह आगच्छ इह तिष्ठ, इस कलश में आओ और यहां बैठ जाओ। सारे तीर्थों को लेके आना भाई, ये पुण्यावाचन। स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध सर्वा आदि सब मंत्र पढ़ के पुण्यावाचन करते हैं। तब फिर उस जल को पूरे घर में छिड़काव करते हैं, दिया जलाते हैं, गणेश स्थापना करते हैं और कलश, तीन वस्तु अनिवार्य है, दीप कलश और गणेश, तब जाकर गृह शुद्धि होता है, घर शुद्ध होता है। तो वो घर में रहोगे तो बड़ी शांति मिलेगी, गृह शुद्धि किए बिना घर में रहोगे अशांति मचेगी। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि महाराज हे शिवा, सांबा, ये दूसरे लाइन में संबोधन है भगवान शिव के लिए, सांबा अंबया समितम सांब, अंबा के सहित, पार्वती के सहित, अपनी धर्म पत्नी के सहित, भक्तो भक्ति गुणान्वृते मुदमृता पूर्णे प्रसन्ने मना कुंभे। भक्त लोग गृह शुद्धि के लिए इसी तरह का प्रक्रिया करते हैं, इसी तरह मैं भी आपका एक भक्त हूं, मैंने भी आपके लिए घर बना रखा है। ये एक जन्म के कर्मों से नहीं, अनेक जन्मों के कर्म से ये घर तैयार हुआ है भाई। ये आपका शरीर जो है वो भगवान शिव का घर है, इसीलिए आप लोगों ने मानस पूजा स्तोत्र पाठ करते हो तो वहां ये भाव, इस श्लोक का सारा भाव उस श्लोक में विद्यमान है, सन्निहित है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरम गृहम। ये इस शरीर के अंदर जो चेतना है हे शिव, यही तुम हो। आत्मा त्वं कूटस्थ के रूप में जो रह रहा है वही तो तुम्हारा स्वरूप है, और वही तुम शिव आत्मा अर्थात कूटस्थ के रूप में इस शरीर में निवास कर रहे हो, तभी ये शरीर मंगलमय है। अन्यथा तुम आत्मा के रूप में निकल जाओ तो शिव निकल गया तो सब हो गया। शिव जब तक निवास करेगा तब तक जीवन है, और जिस समय शिव निकल जाता है तब फिर वो जीवन खत्म बोल दिया जाता है, अब उसके नाम हो जाता है शव। शवाकारम यावत भजति मनुष्यस्तावत अच्छुचि। आपको मैंने एक रहने के लिए घर बना रखा है महाराज, शरीरम गृहम। गिरिजा मती पार्वती, ये हमारी बुद्धि है वही पार्वती है। प्राण जो है पंच प्राण, यही भगवान शिव के गण हैं। सहचरा पूजाते विषयोपभोग रचना, इस शरीर में जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है इंद्रियों के माध्यम से, ये इंद्रियां आपके सेवक हैं महाराज। आजकल वैकेशन का समय है, गर्मी का सीजन है,
बम्बई में घर में रसोईया होते हैं, काम वाले रखते हैं, प्राय करके बारिश शुरू हो गया, मानसून शुरू हो गया तो रसोईया, काम करने वाले, बर्तन मांजने वाले, कपड़े धोने वाले, झाड़ू पोछा लगाने वाले, सब के सब अपने अपने गांव खेती करने के लिए चले जाते हैं। तो भक्त लोग कहते हैं, महाराज भोजन करने के लिए बुलाना था, क्या करे, रसोईया नहीं है, काम करने वाला नहीं है, रसोईया गांव चला गया। हमसे कहते हैं, कभी कहते हैं ड्राइवर घर चला गया, कोई कहते हैं कि रसोईया घर चला गया, कोई कहते हैं कि बर्तन मांजने वाली बाई घर चली गई, गांव चली गई, घर में कोई है नहीं। अरे भाई तुम नहीं हो, घर में कोई नहीं है क्या मतलब होता है तुम नहीं हो? अरे भाई इतना पराधीन जीवन को क्यों बना रखा है भाई, जीवन तुम्हारा है और हमारी आदत इतनी खराब हो गई कि बस पराधीन बना दिया जीवन को। और क्या स्वतंत्रता हो गई तुम्हारी, बोलो तुम्हारी स्वतंत्रता क्या रह गई? एक भोजन के लिए भी पराधीनता है, घर में रहने के लिए पराधीनता है, तो तुम्हारी स्वतंत्रता कहां चली गई? उस अवस्था में यदि कोई महात्मा तुम्हारे घर में खाना खाने जाए तो खिचड़ी के अलावा क्या खाने को मिलेगा उसको? गनीमत है, वो खिचड़ी मिल भी जाए तो गनीमत है, वो भी ताजा है। नहीं तो रसोईया आदि सब चले गए, पका के रख दिया होगा फ्रिज में, निकालते रहो और माइक्रोवेव में गर्म करो, खाते रहते हो। बड़े बड़े लोग ढंग का नहीं खाते हो, इसी तरह उन लोगों का खाना पीना रह रहा है। अब परिणाम हजार रोग से ग्रसित हो जाते हैं, वही लोग ज्यादा ग्रसित होते हैं रोग से, खाते हैं करते नहीं, तो अन्न पचता नहीं, अन्न में शुद्धिता नहीं, विकार है। अरे भैया तुमने शरीर घर तो बना दी और उस शरीर में मैं रहता जाऊं, आ जाऊं, बैठ जाऊं, तो मेरी सेवा कौन करेगा, रोटी कौन खिलाएगा, कपड़े कौन धोएंगे, नौकर चाकर आए कि नहीं? बोले महाराज सब एक नहीं दस दस है, इस घर में नौकरों की कमी है क्या? कितनी है नौकर हैं? दस नौकर है, एक सुपरवाइजर है, मन मन सुपरवाइजर है, बुद्धि तो आपकी पत्नी है ही है, आप आइए महाराज, शरीर में बैठिए। आत्मा त्वम गिरिजामति सहचारा प्राणा, आप अपने दोस्तों के यार दोस्तों के सहित आइए, ताकि आपको इस घर में रहते समय में मित्रों का मनोरंजन करने का अभाव न खटके। हम मित्रों को लेके आइए, दोस्तों को भी लेते आइए, रहिए यहां। पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, तो आपकी पूजा होगी, ये सेवा करेंगे, पूजा माने सेवा, ये सारे इंद्रियां एक से एक सेवा करेंगे। बढ़िया आंख, बढ़िया बढ़िया रूप लाकर तुमको दिया करेंगे, रूप दिखाया करेंगे, टेलीविजन देखने को मिलेगा। वो चक्षुर इंद्रिय का मतलब है, शिवजी को कहा टेलीविजन भी है। हमको एक व्यक्ति सुना रहे थे, कोई महात्मा यहां प्रेमपुरी आश्रम में कथा करने आया और उस महात्मा ने कह दिया कि महात्मा के रूम में टेलीविजन नहीं है, टेलीविजन लाओ, एक टीवी लाओ। तो किसी सज्जन ने कह दिया कि नीचे टीवी रूम है, वहां रखा है, सभी लोग वहीं जाकर टीवी देखने वाले वहां जाकर देखते हैं, रूम रूम में टीवी रखा नहीं है। बोले हम कर्मचारियों के बीच में जाकर थोड़ी देखेंगे टीवी, हम महात्मा हैं, अलग रूम में टीवी चाहिए। किसी ने कहा, हमको सुनाया भाई, अरे हमने कहा, हमने तो कभी कहा नहीं बाबा, हमको तो जरूरत नहीं है, हम तो टीवी रूम में भी नहीं जाते, देखते ही नहीं है। तो किसी ने कह दिया, उसकी इच्छा हुई होगी।
अरे भाई, ये नेत्र ही तो टीवी है, देखो ना जितने दृश्य देखना है। टीवी में भी दृश्य दिखता है, आंख खोल ले, खड़े हो जाओ, बाहर छत में चले जाओ, दृश्य ही दृश्य। पक्षी उड़ रहे हैं आकाश में, प्लेन उड़ रहे हैं आकाश में, बादल उड़ रहे हैं आकाश में, वृष्टि हो रही है, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग बन रहे हैं। टीवी में इनके अलावा और दृश्य क्या दिखेगा? यही तो दिखेंगे, मनुष्य दौड़ रहे हैं, गाड़ी दौड़ रही है। वाह, आंख खोल लो, इससे बढ़िया टीवी और कहां मिलेगा तुमको, बिना बिजली का है? क्या सुंदर टीवी है। महाराज आप आओ, मनोरंजन के लिए बहुत साधन है यहां। और संगीत सुनना हो तो ये कान देवता, कान है सेवक, आपके बढ़िया बढ़िया म्यूजिक सुना देंगे। हाँ, अब भोजन करनी हो बढ़िया बढ़िया तो ये रसना देवी है। हाँ, मैडम रसना तो है ही है तुमको, क्या बढ़िया बढ़िया जो चाहो बनाओ। ये सब सेवक भी है महाराज, आओ। तुम्हारे घर तो अशुद्ध है, बोले नहीं ना महाराज, पुण्य आवाचन कर लिया है, शुद्ध है अब घर, घर दूषित नहीं है। कैसे शुद्ध किया तुमने? बोले हाँ, भक्तो भक्ति गुणानवृत्ति गुणावृत्ति। संस्कृत भाषा में गुण शब्द का अर्थ होता है डोरी, रस्सी। कलश में रस्सी बांधते हैं कि नहीं? उसके कंठ में मौली बांधते हैं कि नहीं? और गुण है, उसका नाम है गुण, क्योंकि उसमें तीन चार धागे पांच धागे मिले हुए होते हैं। और कम से कम तीन धागा का तो होगा ही होगा, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तीन गुणात्मी का गुण रस्सी डोरी मौली बांध दिया। भक्तो भक्ति, ये भक्ति ही गुण है, रस गुण माने डोरी है। मुदमृता पूर्णे, हाँ अमृता पूर्ण, प्रसन्नता आनंदता रूपी अमृत जल आपूर्णे परिपूर्ण है उस घड़े में। किस घड़े में? मन कुंभे, मन रूपी कलश में, मैंने मदमृता पूर्णे प्रसन्ने मनः, मन बड़ा मजा हुआ है, प्रसन्न माने स्वच्छ, माज कर एकदम चमका के चमक के रख दिया है। तांबे का घड़ा होता है ना, तो कहीं दिन ऐसे ही रखा हुआ होता है तो काला होता है, जब उसको थोड़ा सा खटाई लगाकर, नींबू का पानी आदि कोई खटाई लगाकर माजोगे तो फिर हुआ तांबे का बर्तन क्या चमकता है। इसी प्रकार से ये मन अनादिकाल विषय सेवन के चलते इसमें बहुत कालुष्य हो गया है महाराज, इसका मैंने संयम आदि साधनों के द्वारा इस मन को प्रसन्न अर्थात स्वच्छ बना दिया, माज कर रखा है, क्या चमकता हुआ ये मन है। ये कलश बड़ा चमकता हुआ है। मना कुंभे तमांग्री पल्लव युगम शांबम, हाँ अम्बा सहित, पार्वती के सहित, सह अम्बा अंबिके, सह अंबिके अंबिका अम्बा, अम्बे अंबिके अम्बाल के नमः नयति कश्चन सशस्त स्वक सुभद्रिकां काम पीलवासिनी मां। देवी के मंत्र में पूजा करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करते, अंबे अंबिके अंबालिके सांबा, पार्वती के और आपके, पार्वती के दो चरण, आपके दो चरण, तवांगी और आपके चरणों को ही मैंने उस कलश में रखने का पल्लव बना लिया, पल्लव के रूप में रखा है चरण की भक्ति है। पल्लव रखते हैं ना आप है? आम के पत्ते, पिपल के पत्ते, बड़ के पत्ते, शमी के पत्ते, हाँ औदुम्बर के पत्ते, पंचपल्लव बहुत प्रसिद्ध है, पंचपल्लव रखना चाहिए कलश में। तवांग्री पल्लव युगम संस्थाप्य संबित फलम, बहुत दीन के ज्ञान से प्राप्त, सत्संग आदि से प्राप्त जो ज्ञान है, वो ज्ञान रूपी नारियल हमने उस कलश के ऊपर पल्लव रखा और पल्लव के ऊपर नारियल भी रख दिया है महाराज, और इस तरह कलश बना दिया है। तत्व मंत्र मुदीरय निजर शरीरागार सुदिम्बान, और उसके बाद सत्वम मंत्र, वेद के कई सात्विक मंत्र, मंत्र में भी सात्विक और राजसिक तामसिक होते हैं, हाँ। सात्विक विधि से कर्म किया जाने वाला कर्म और उस कर्म का विधायक और सात्विक फल निर्माण के लिए जो विनियोग होने वाले कर्म हैं उनको सात्विक मंत्र कहते हैं। जैसे निष्काम कर्म का प्रतिपादक मंत्र होंगे वे सारे के सारे मंत्र सात्विक मंत्र कहलाते हैं, और काम्य कर्म में प्रयोग होने वाले जितने भी मंत्र हैं, स्वर्ग कामो ये जेता इत्यादि, फलक श्रुति बताकर ये कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा, ये कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा, इस कर्म के लिए इस फल के लिए इस विधि से ये कर्म करो, ये कर्म का सकाम कर्म का प्रतिपादन करके विधि का प्रकाशन करने वाले जितने मंत्र हैं उनको राजसिक कर्म मंत्र कहते हैं। और तंत्र में विशेष करके ये तंत्र का विधान है, वेद के मंत्र में तंत्र भी है, मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन त्राटन आदि जो व्यभिचार के लिए प्रयोग होते हैं, ये सब वैदिक कर्म है, वेद में ये सब हैं। किसी शत्रु पक्षे का मारने की, वह मर जाए तो अच्छा है, उसके लिए अविचार प्रयोग करके अनुष्ठान करते हैं, उस अनुष्ठान में प्रयोग होने वाले मंत्र किसी को मारण के प्रयोग में प्रयोग तो होता है, अविचार प्रयोग तामसिक मंत्र है, क्योंकि वह कर्म भी तामसिक है, उसका फल भी तामोमय है, अनिष्ट है, पाप का कारण है, और उसको बताने वाले मंत्र वो तामसिक मंत्र कहलाते हैं। कर्म भी तामसिक है, मंत्र भी तामसिक है, क्रिया भी तामसिक है, और उसका फल भी तमोगुण ही होगा और तामसिक ही होगा। यहां बता रहे सत्व मंत्र, ये हमने न राजसिक मंत्र का प्रयोग किया है न तामसिक मंत्र का, शुद्ध सात्विक मंत्रों का प्रयोग किया है, निष्काम भाव उसको प्रतिपादन करने वाले मंत्र को उपयोग में लाया है। नम संभवाय च महोभवाय च नम शंकराय च महेश्वराय च नम शिवाय च शिवत्तराय च सद्योजातम प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमः इत्यादि मंत्रों के द्वारा उस कलश का अभिमंत्रण किया है। सत्वम मंत्र मुदीरयन निज शरीरागार, इस प्रकार से कलश स्थापना करके जलों का अभिमंत्रण करके पुण्य आवाचन आदि करके तीर्थों का आवाहन करके ज्ञान रूपी अमृत मुदा अमृतामृत से जला हुआ जल और भक्ति रूपी रस से बना हुआ और संबित यथार्थ ज्ञान रूपी नारियल रखकर ऐसे कलश तैयार करके उस जल का छिड़काव किया हुआ ये शरीर रूपी घर है, आपको रहने के लिए बड़ा उत्तम तैयार हो गया महाराज, हाँ। अब निसंकोच पार्वती के सहित आकर रही है, हाँ। सभी नौकर अनुशासित हैं, हाँ। सभी नौकर अनुशासित हैं, आपकी सेवा करेंगे तत्पर। बाणासुर ने जो सेवा की थी ना भगवान शिव को, पहले तो भगवान शिव की सेवा करने की इच्छा की, भगवान शिव प्रसन्न हो गए, क्या चाहता है, बोले महाराज आपके मैं पार्थिव शिवलिंग के निर्माण करके आपकी पूजा करना चाहता हूं, प्रतिदिन 1.25 करोड़ पार्थिव लिंग, उसके लिए 2 हाथ कम हो गए। भगवान ने शिव ने विचार किया कि ऐसा भक्त तो बहुत दुर्लभ है भाई, क्या भक्त है, इसको दो हाथ क्या, सौ हाथ क्या, हजार हाथ दे देता हूं। भगवान शिव ने उसको हजार हाथ दे दी। अपने आप चार हाथ वाले हो गए, दो हाथ वाले हो गए और भक्त को हजार हाथ वाला बना दिया। जब मेरी सेवा करने के लिए हाथ मांग रहा है तो उसको हाथ देने में क्या कंजूसी, बोलो क्या कंजूसी है? जब मेरे ही भोजन के लिए सामग्री किनने जा खरीदने जा रहा है तो उसको पैसा देने में क्या कंजूसी है? दूसरों को खिलाने के लिए, भोजन बनाने के लिए सामग्री खरीदने, सब्जी या चावल दाल ये खरीदने जाता होता तो पैसा देने में कंजूसी करे। मुझे ही खिलाने के लिए जब उसको पैसा चाहिए तो देने में क्या कंजूसी? इसी तरह मेरे ही सेवा के लिए हाथ मांग रहा है, दुनिया की सेवा के लिए नहीं मांग रहा है तो देने में क्या हर्ज है? थोक में दे दिया, होलसेल में दे दिया, जा एक हजार हाथ दे दिए। और उस एक हजार हाथ प्राप्त करके बाणासुर ने कोई लौकिक कर्म नहीं किया, शास्त्रीय कर्म किया, कोई व्यावहारिक कुटुंब संबंधी कर्म नहीं किया, भगवान शिव की ही अर्चना की ईमानदारी से। तो भगवान प्रसन्न हो गए, बोल क्या चाहता है? महाराज आपके इस प्रतीक पार्थिव लिंग की पूजा करके आप प्रसन्न हो गए हैं तो मैं चाहता हूं कि अब साक्षात आपकी ही सेवा करो। आपके प्रतीक शिवलिंग की सेवा करके आप प्रसन्न हुए हैं, अब मैं चाहता हूं कि आपको खुद आपकी सेवा करूं मैं। और मेरा राजधानी है तेजपुर, तेजपुर में मेरा राजमहल है, बड़ा सुंदर है, मैं खुद सेवा करूंगा, किसी को सेवा में नहीं लगाऊंगा। आप चलिए, मैं चाहता हूं कि आप मेरे ही घर में रहें और नित्य मैं आपकी सेवा करूं, बस यही इच्छा है, आप मेरी इच्छा ही पूरा करें। भगवान शिव ने कहा कि बेटा तेरी इच्छा ये भी पूरा हो जाएगी। तो भगवान शिव पार्वती के सहित तेजपुर बाणासुर के राजधानी में निवास करने लगे, घर में राजमहल में निवास करने लगे। अब तो भगवान शिव आराम से खाना पीना खा रहे, सहन कर रहे हैं, बाणासुर एक हजार हाथ से शिव जी के शरीर को मालिश कर रहा है। क्या आनंद आ रहा होगा शिव जी को, है क्या आनंद आ रहा होगा? आप लोगों को पता है ना, केदारनाथ भगवान शिव किसका रूप है? केदारनाथ भैंस का रूप है, और क्या? केदारनाथ भगवान शिव किस रूप में है? भैंस के रूप में है। अब ये कहानी तुम लोगों को पता है ना, क्यों हुई भैंस, कैसे भैंस होकर रहे? द्रोणाचार्य आदि को मारने का, ब्रह्म हत्या का पाप पांडवों को पीछे लग गया। तो अब उस पाप से, ब्रह्म हत्या के पाप से कैसे मुक्त हो? किसी ने कह दिया भगवान शिव को स्पर्श कर लो तो ब्रह्म हत्या का पाप चला जाएगा। अब कहां है शिव? बोले हिमालय में है, वहां रहते हैं। तो पांडव लोग चले गए, अपनी पाप नष्ट करने के लिए भगवान को छूना चाह रहे हैं। ऐसे भी भक्त होते हो, होते भगवान को पता चल गया ये ब्रह्म हत्या का पाप अपने में लगा हुआ, मुझे उतारना चाहते हैं, बदमाश हैं, इनके सामने मैं प्रकट नहीं होऊंगा। तो उन्होंने भैंस का रूप का धारण करके वहीं जंगल में, जंगल तो है नहीं केदार में, जंगल तो है ही नहीं, घास जरूर रहता है, वहीं घास चर रहे आराम से। और पांडव लोग गए शिव जी को खोज रहे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, कहीं शिव नहीं मिल रहे, कई दिन हो गया शिव जी मिलते ही नहीं है। तो कहा कि तुमने कहा कैलाश में माने केदार में रहते हैं शिव जी, पहाड़ों में इतने दिन हो गया मिले नहीं है। जिसने शिव जी को जानते थे उन्होंने कह दिया वो जो घास चर रहा है ना वही है, काला सा मोटा भैंस होकर भगवान शिव घास चर रहे थे वही है, इशारा कर दिया किसी ने। अब पांचों के पांचों ब्रह्म हत्या पाप अपने से निकाल कर शिव जी को स्पर्श करने के लिए पीछे लग गए। भगवान शिव भैंस होकर भागे भागे, आगे आगे शिव भाग रहे हैं और पीछे पीछे पांडव लोग भाग रहे हैं। भगवान खड़े हो जाओ, अरे भाई क्या खड़े हो गए, तो भागे शिव। शिव जी को पकड़ना संभव नहीं हुआ, तो उसमें से सबसे बलशाली जो भीम, वो जरा ऊंचे भी थे, लंबे थे, उनके पांव थोड़ा लंबे, वो लपक लपक के दौड़े और शिव जी को पकड़ लिया, पूंछ पकड़ लिया शिव जी का, भैंस का, वो पूंछ पकड़ लिया, खड़े हो जाओ यही। अब भगवान शिव आगे बढ़ने के लिए खींच रहे हैं, भीम खींच रोक रहा है। इतनी में भगवान शिव ने अपने सिर धरती में गाड़ चुके थे, छुपने के लिए सिर तो गाड़ी दिया था और पूंछ पकड़ लिया धड़। वो सिर जमीन में जो गाड़ा था निकल गया नेपाल में पशुपतिनाथ, पशुपति पशुओं का स्वामी हो गए वो, क्योंकि आकार पशुपति है वो, मुख वहां पहुंच गया मुखो भाग, और धड़ अभी केदारनाथ में है और वहां की पूजा सामग्रियों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बढ़िया पूजा है घी और मक्खन लेके जाओ, और बड़ा भारी है वो शिवलिंग, चट्टानी शिवलिंग है, गोलमटोल नहीं है जैसे तुम लोग और जगह शिवलिंग देखते हो, वैसा नहीं है वहां, जैसे हिमालय पहाड़ है सेम पहाड़ का ही आकार में बड़ा भारी चट्टान है, चार आदमी ऐसे पकड़ोगे तभी उसका घेरा को हम घेर पाओगे। अब उसमें खूब मलते हैं, खूब मालिश करते हैं, तो तवेले वाले जानते हैं कि भाई इसके दूध ज्यादा निकालना हो तो दूध दोने से पहले खूब पानी उसमें शरीर में डालो और खूब मालिश करो, खूब डालो, खूब मालिश करो। तो भैंस पूंछ खड़ा करके आराम से, उसको बड़ा आनंद होता है तब दुओ तो दूध खूब ज्यादा मिलता है, भैंस के प्रतीक है वो, तो इसलिए खूब मालिश करते हैं, खूब मालिश करते हैं, खूब मलो, जितना मलो घी मक्खन उतने ही भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। केदारनाथ की पूजा में ये महत्वपूर्ण एक अंग है, घी का मक्खन का मालिश। भक्तो भक्ति गुणावृते मुदमृता पूर्णे प्रसन्ने मनः कुंभे सांब तवांग्री पल्लव युगम संस्थाप्य संबित फलम सत्वं मंत्र मुदीरयन् निज सरी रागार शुद्धिं वहन्। निज शरीरागार, शरीर रूपी घर, इसको मैंने शुद्ध किया है महाराज। पुण्याहम प्रकटी करो मी रुचिरम, क्योंकि पुण्यावाचन करके इसको शुद्ध किया है तो प्रकटी करो मी रुचिरम कल्याण मापातयन, आप यहां स्वयं आत्मा रूप में निर्वास करके अपने आप को प्रकट करके नित्य निवास करके कल्याण मापातयन मुझे कल्याण करें, मेरा उपकार करें, अनुग्रहित करें, तब इस घर बनाने का मैं अपने आप को सार्थक मानूं। यही है जीवन का सार्थकता, यही है कि इस शरीर के अंदर जो हृदय दहराकाश है उस दहराकाश में शिव तत्व का साक्षात अपरोक्ष अनुभव करना, यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साफल्यता है। जब तक परम तत्व का साक्षात अपरोक्ष नहीं होता है तब तक हाँ ये जीवन सफल नहीं माना जाएगा। उसके आगे कहते हैं आम्बा आम्नायाम बुद्धिमादरेण सुमनः संगा समुद्यन मनो मंथानम दृढ़ भक्ति रज्जु सहितम कृत्वा मथित्वा ततः सोमम कल्पतरुम सुपर्ण सुरभिः सुरभिम चिंतामणिम धीमताम नित्यानंदम सुधाम निरंतर रमा सौभाग्यमातन्वते। शंकराचार्य जी ने फिर यहां समुद्र मंथन का स्मरण किया है। देवता और असुर नित्य निरंतर अमृत की कामना करते हुए समुद्र का मंथन करते हैं। वे लोग समुद्र का मंथन करते हो तो भले ही करें, मैं भी समुद्र मंथन करूंगा, लेकिन असुरों को लेकर नहीं। किन साधनों से समुद्र मंथन करोगे, कहां करोगे? आप लोगों ने पुराण में कई बार सुना है, सुमेरु पर्वत को मदानी बनाया है ना? सुमेरु पर्वत को क्या बनाया देवता और असुरों ने? मदानी बना लिया। और वासुकी नाग को रस्सी बना ली खींचने के लिए, उसको घुमाने के लिए। मुख के तरफ देवता लगे, पूंछ के तरफ नहीं, मुख के तरफ असुर लगे, पूंछ के तरफ देवता लगे। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, आप लोगों को पता है कि नहीं, गए होंगे बहुत लोग, या न भी गए हों पता। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, बैंकॉक का जो एयरपोर्ट है बड़ा भव्य है। और आश्चर्य की बात है, थाईलैंड जो है बुद्ध धर्म सापेक्ष राष्ट्र है, वहां राज संवैधानिक राजतंत्र है प्रजातंत्र, लेकिन राजा सिंबॉलिक है, राजा हैं, सेरेमोनियल है, राजा सेरेमोनियल है, रहते बड़ा राजा को भगवान की तरह मानते हैं, बुद्धिस्ट सब बुद्ध धर्म मानते हैं। लेकिन एयरपोर्ट में तो इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, वहां ठीक ये समुद्र मंथन का बड़ा भारी दृश्य बनाकर स्टैचू बनाया हुआ है, बड़ा भारी तो लॉन लॉबी है ना बड़ा, या सारे यात्री जहां इमिग्रेशन के लिए आउट और इन होते हैं, मेन डोर अंदर एयरपोर्ट के अंदर टिकट लेकर बोर्डिंग होने के बाद, सिक्योरिटी चेक होने के बाद जब आप इन करते हैं अंदर, बाहर नहीं, आउटसाइड में नहीं, इनसाइड में, सिक्योरिटी चेकिंग के बाद जहां से टर्मिनल, किस टर्मिनल में जाना है, 1, 2, 3, 4 इत्यादि, वहां का सिंडिकेट है, वहां का वहां वो सूची रखा हुआ है, उसको देख देख कर यात्री उधर उधर जाते हैं, वो सेंटर है, बड़ा भारी खुला मैदान है, ये हॉल के डबल हॉल है, और बड़े ऊंचे ऊंचे तो सुमेरु पर्वत बनाया, और पानी का सरोवर वहां बनाया कुंडा, और सुमेरु पर्वत की प्रतीक बनाया, वासुकी नाग रखा है, एक तरफ असुरों और आगे के तरफ असुर और पीछे के तरफ देवता, उनके आकार ही एकदम देवता और असुरों की आकार ही बना रखा है, और पूंछ पकड़ के बैठे हैं देवता लोग, मुख के भाग पकड़ के हैं असुर, समुद्र मंथन पानी कलकला रहा है, फुहारे से पानी चल रहा है। वो दृश्य देखा तो मैं आश्चर्य में, हम लोग वैदिक सनातन धर्म के प्रतीक मानते हैं, है? वो लोग सब बुद्ध धर्म मानने वाले हैं, वे लोग हमारे पौराणिक प्रतीकों को इस तरह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में प्रदर्शित कर रहे, पुराण को कितना आदर किया उन्होंने, और हम लोग कोई परमात्मा के पौराणिक सिंबल सब जो हैं उनको भी, प्रतीक जो है उनको भी हम नष्ट करते जा रहे हैं, नाश करते जा रहे हैं। हाँ, मुझे बड़ा आश्चर्य, भाव विभोर हो गया मैं तो, थाईलैंड में जहां बुद्धिस्ट ही बुद्धिस्ट है, जहां का धर्म बुद्ध धर्म को प्राथमिकता देता है, जहां का संविधान बुद्ध धर्म सापेक्ष है, वे लोग हमारे पुराणों के प्रतीकों को इस तरह इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बना के रखा। कितना खर्च किया होगा, कितना जगह उसने उगटा है, तो समुद्र मंथन का दृश्य वहां रखा है। हाँ, तो हम भी समुद्र मंथन करेंगे महाराज, तो समुद्र क्या होगा? बोले आमनायाम बुद्धि, ये वेद ही समुद्र होगा। शंकराचार्य जी कहते हैं वेद को क्या कहते हैं, क्या बनाया? समुद्र बना लिया। आमनायाम बुद्धि बुद्धिम आदरेन सुमना संघास्म मुद्यन मनो मंथानम दृढ़ भक्ति रज्जु सहितम मन को मंथाना बनाया, मथानी बना ली, सुमना संघा सुसंस्कारित मन, क्योंकि मथानी जरा बलवान चाहिए, ताकतवर चाहिए, समुद्र मंथन करना है, वेद का मंथन करना है, साधारण शक्ति संकल्प शक्ति से वेद का मंथन नहीं होगा। समुद्यन मनो मंथानम, मन मंथाना है, दृढ़ भक्ति रज्जु सहितम, आपके चरण में अनन्य जो भक्ति है, दृढ़ भक्ति, मजबूत डोरी रस्सी चाहिए ना, साधारण रस्सी तो टूट जाएगी, साधारण रस्सी तो टूट जाएगी, तो इसीलिए दृढ़ भक्ति बहुत दृढ़। सहितम कृत्वा मथित्वा ततः, तुमने मन रूपी मथानी शिव दृढ़ भक्ति रूपी रस्सी से और वेद रूपी समुद्र का मंथन करोगे तो उपलब्धि क्या होगा बेटा? बोले समुद्र मंथन से देवताओं को जो उपलब्धि हुआ है उससे कम उपलब्धि नहीं होगी। यहां कोई मुमुक्षु जिज्ञासु वेद का मंथन करता है, अनुसंधान करता है, मनन ही मंथन है भाई, मन के द्वारा जो मनन है, निधिध्यासन है, वही मंथन है। निधिध्यासन फल है, मनन मंथन है। सोमम, फल क्या होगा? सोमम, सोम माने अमृत, अमृत निकला कि नहीं समुद्र मंथन के बाद? देवता लोग उसी के लिए अमृत, अमृत के लिए, सोम के लिए ही तो मंथन करते थे। शंकराचार्य जी कहते हैं मैं भी सोम के लिए ही मंथन करूंगा वेद का। सोम माने उमा सहित सोमा, सह उमा सोमा, वेद का मंथन करके मुझे क्या प्राप्त होगी? बोले उमा सहित आपकी प्राप्ति होगी, शिव जी की प्राप्ति होना। ये उमा और शिव क्या है? ब्रह्म विद्या ही उमा है। केन उपनिषद में तत्र हेमवतीम उमाम, हेमवतीम उमाम, ये शब्द आया है ब्रह्म विद्या के लिए। और ब्रह्म विद्या उमा है तो ज्ञान साक्षात भगवान शिव है। ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वरा, विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षु से श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्थ धारिणे। विशुद्ध ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान ही भगवान शिव का देह है, स्वरूप है। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षु से, तीन वेद भगवान शिव के तीन नेत्र हैं, वह दिव्य चक्षु है। विशुद्ध ज्ञान उनका शरीर है और तीन वेद उनके नेत्र हैं। श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्ध धारिणे, उमा सहित शिव को हम श्रेय प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए नमस्कार करते हैं। नमः सोमार्ध धारिणे, आधा चंद्रमा जिसने धारण किया हुआ है। सोमम, पहले तो उमा सहित सो, सोमम या अमृत, समुद्र मंथन करने वाले को अमृत, दृढ़ मन और भक्ति रूपी रस्सी से वेद का मंथन करने का तो वेदांत, वेदांत की जो ब्राह्मी विद्या है, तम तौ उपनिषदम पुरुषम पिच्छामि, वही तो सोम है और क्या। औपनिषद पुरुष कौन है? तो वे ब्रह्म। औपनिषद पुरुष, उपनिषद प्रतिपादित पुरुष, औपनिषद पुरुष वही सोम है। कल्पतरुम, वहां भी कल्प वृक्ष पैदा हुआ था, यहां कल्पना ही संकल्प सिद्धि। वो तो सोता ज्ञानी को तो वो तो अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा, अपने आप प्राप्त हो जाएगा उसके संकल्प सिद्धि। सुपर्ण सुरभि कामधेनु गाई, वहां पर भी और यहां पर भी सारी कामना को पूर्ण हो जाएगा। आत्मज्ञान होते ही सारी कामना पूर्ण हो जाने के कारण यही तो सुरभि है, कामधेनु गाई है, कामना पूर्ण। कामधेनु गाय को प्राप्त करके देवताओं की कामना पूर्ण नहीं हुई समुद्र मंथन करके भी, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपको प्राप्त करके मेरी सारी कामना पूर्ण हो जाएगी। तो ये कामधेनु अच्छी है कि वो कामधेनु अच्छी है? बोलो, ये कामधेनु अच्छी है। सुपर्ण सुरभि चिंता मणिम धीमताम, बुद्धिमानों के लिए ये चिंतामणि है। नित्यानंद सुधाम, और कौन सी अमृत की प्राप्ति होगी? नित्य आनंदा, समुद्र मंथन करके देवताओं को जो अमृत की प्राप्ति हुई है वो तो अनित्य आनंद है। देव सुधा वो तो अनित्य आनंद है, कहते हैं ना भागवत में, भागवत श्रवण की महिमा। जब परीक्षित सुखदेव को, मैं सुखदेव जी जब परीक्षित को भागवत सुनाने लगे सुक्रताल में, देवता लोग अमृत का कलश लेकर आ गए और कहा सुखदेव जी को, महाराज ये तुम ये भागवत यहां क्यों सुना रहे हो? बोले परीक्षित को तक्षक नाग दंशन करेगा और 7 दिन में मृत्यु होगी, ये निश्चित हो गया है, इसलिए मैं उसको अमर बनाना चाहता हूं। बोले उसके लिए ये भागवत क्या सुनाओगे, ये पिला दो अमृत। बोले पिले अमृत, ये अमृत तो उसको पिला दो, भागवत लेकर स्वर्ग चलो, वहां हमको ये भागवत के अमृत पिला दो। स्वर्ग में ये अमृत नहीं मिला हमको, स्वर्ग की जो अमृत है पीने पर भी मरना पड़ता है। तेतम लोक तेतम भूत भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत लोकम विसंति, फिर लौटकर आना पड़ता है। ये अमृत तो हमने कई बार पिया है, फिर कई बार धरती में आना पड़ा है। आपने सुखदेव को जो अमृत पिलाने जा रहे हो वो फिर पुनर्जन्म न होने वाला अमृत है, हम ये अमृत पान करना चाहते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि को सुधा है, कहां को 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 मणि को कांच है, कहां तो चिंतामणि और कहां कांच का टुकड़ा। तुम जो कलश में अमृत ला रहे हो ना, तो कांच के टुकड़े की तरह है, और मैं जो भागवत सुना रहा हूं उसको, ये तो चिंतामणि की तरह है। नित्यानंद, ये हमेशा आनंद देने वाला है। दुखत्रय आत्यंतिक निवृत्ति परमानंद प्राप्ति, यही वो अमृत का फल है। नित्यानंद सुधाम निरंतर रमा, और लक्ष्मी भी प्राप्त हुई थी समुद्र मंथन में। तुम्हारा वेद मंथन करके कौन सी लक्ष्मी प्राप्त होगी भाई तुम्हारे को? हाँ, निरंतर रमा सौभाग्य मातन्वते। अष्टलक्ष्मी आप लोगों ने सुना है कि नहीं? लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं। एक है भोग लक्ष्मी, दूसरी है संतान लक्ष्मी, तीसरी है योग लक्ष्मी, ऐसे 8 लक्ष्मियों में से अंत लक्ष्मी है मोक्ष लक्ष्मी। मोक्ष लक्ष्मी वो भोग देने वाली नहीं है, योग देने वाली नहीं है, संतान देने वाली नहीं है, जन्म मृत्यु को समाप्त करने वाली है, वो मोक्ष लक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी में एक लक्ष्मी है मोक्ष लक्ष्मी, उसकी पूजा होती है, उसकी स्तोत्र है मोक्ष लक्ष्मी के। इसलिए ब्राह्मी श्री सनत सुजात भगवान ने धृतराष्ट्र को इस ब्रह्म विद्या को ब्राह्मी श्री कहा। ब्रह्म विद्या रूपी श्री लक्ष्मी, तो वेद का मंथन करोगे तो प्रगट क्या होगा? ब्रह्म विद्या ब्राह्मी श्री अर्थात मोक्ष लक्ष्मी। आतन्वते, फिर उसकी प्राप्ति जब हो जाती है, इससे बढ़कर और भाग्य खुलने का और क्या अवसर होगा? हे भगवान, मैं भी समुद्र मंथन करूंगा, मन के द्वारा वेद का मंथन करूंगा, और उससे आपकी जो प्राप्ति होगी उसमें कोई विघ्न ना आवे, बस आप उसमें सहयोग करें, सहभागी बने, और मेरे जीवन में मोक्ष लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं शूत्रभाष्याकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।